नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में श्री पुतिन का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को रूस के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की राजकीय यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 बार मिल चुके हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संस्थागत संवाद तंत्र है। 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार $68 बिलियन से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दोनों नेताओं ने 2030 तक व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्री पुतिन ने भारत आने से पहले एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आसानी से दबाव में आने वाले नेता नहीं हैं और भारत के लोगों को उन पर गर्व है। श्री पुतिन ने भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने पर अमरीका की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यदि अमरीका को रूस से तेल खरीदने का अधिकार है तो भारत को भी ये अधिकार मिलना चाहिए। भारत ओमान रणनीतिक परामर्श समूह की 14वीं बैठक कल ओमान के मस्कट में आयोजित की गई। बैठक में भारत और ओमान के बीच राजनीतिक, रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों सहित बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई। रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए आज ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए इसे 5.25% कर दिया। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति में इस निर्णय की घोषणा की। इससे आवास, ऑटो और वाणिज्यिक सहित विभिन्न ऋण सस्ते होने की उम्मीद है। ये कटौती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के पिछले 3 महीनों से सरकार द्वारा निर्धारित 2% के निचले स्तर से नीचे रहने के मद्देनजर की गई है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला शुरू होने के बाद ये सबसे निचला स्तर है। लोकसभा की कार्यवाही तमिलनाडु के मदुरई में एक मंदिर में दीप जलाने के विवाद पर डीएमके सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और इस मामले पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सदस्यों से अपनी सीट पर वापस जाने और सदन को देने का आग्रह किया। अपील के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्यों ने इस मामले को लेकर वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही इस समय जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की 18 से ज्यादा संपत्तियां, सावधि जमा, बैंक में जमा धन और गैर सूचीबद्ध निवेशों में शेयर धारिता जिनकी कुल कीमत 1120 करोड़ रुपए है, जब्त कर ली है। निदेशालय ने एक बयान में कहा कि ये जब्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत रिलायंस अनिल अंबानी समूह के बैंक धोखाधड़ी मामलों में संबंध में की गई है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बागधार के पास कल रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाकर शव और घायलों को खाई से बाहर निकाला। जांच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।